जय गोपी जना बल्लभ गिरिवर धारी जय सर्वासुखमयादित लोगों का शब्दार्थ ऐसे हैं, मेरे पीछे बोलिए, यदा जब न नहीं कुरते करता है भावम अनुरक्ति या द्वेष से भिन्न मनोवृत्ति सर्वभूतेषु सारे जीवों में अमंगलम अशुभ समदृष्टि होने पर समदृष्टि होने से तदा उस समय तब पुंस पुरुष का सर्वा सारा सुखमय अवस्था में दिशा है। ट्रांसलेशन एंड पर्पट ही डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन। जब मनुष्य द्वेषहीन होता है और किसी का बुरा नहीं चाहता तो वह समदर्शी होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सारी दिशाएं सुखमय प्रतीत होती है। तात्पर्य अवधारंद सरस्वती ने कहा है, विश्वम पूर्ण सुखाप्यते। जब मनुष्य भगवान चैतन्य के अनुग्रह से कृष्ण भावना भावित बनता है तो उसे सारा संसार सुखी दिखता है और उसे किसी वस्तु की लालसा नहीं रह जाती। ब्रह्मभूत अवस्था में या दिव्य साक्षात्कार के पद पर न कोई संताप रहता है, न कोई भौतिक आकांक्षा, न सोचति न कांक्षति। जब तक मनुष्य इस जगत में रहता है तब तक कर्मफल चलते रहते हैं, किंतु जब मनुष्य कर्म तथा फलों से प्रभावित रहता है तो वो भौतिक इच्छाओं का शिकार बनने के खतरे से बच जाता है। इस श्लोकों में उन लोगों के लक्षण का वर्णन हुआ है जो कामिच्छाओं से उत्प्रत है। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बतलाया है, जब मनुष्य अपने शत्रु से भी द्वेष नहीं रखता, जब वो किसी से सम्मान नहीं चाहता, उल्टे वो अपने शत्रु तक का भला चाहता है, तो वो परमहंस कहा जाता है। अर्थात जिसने अपनी काम वासनाओं को पूरी तरह दमित कर लिया है। ओम ज्ञानतिमिरांगस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलिताङ्गेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापिताञ्जेन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सग्रजतं सगन रघुनाथनितं तं सजीवम् साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगन ललिता सिद्धिशाखानितं स हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्सतनगौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राधा गिरिधर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री गौर निताई की, श्री प्रभुपाद की। तो ये भागवत के प्रसंग में जजाति महाराज का जो मुक्ति, ऐसे तो मुक्त पुरुष है, मुक्त पुरुष नहीं होते तो भागवत में नहीं आते, लेकिन संसार के लोगों को मुक्त करने के लिए ऐसे कभी शुद्ध भक्त बंधन था अपने जीवन में अपना लेते हैं। जजाति महाराज के वंश में साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए। आगे जाकर हमें देखेंगे जजाति महाराज के जो भाई है जदु, ये पुरु है, जजाति महाराज के पिताजी है, मैं गलत बोला, जजाति महाराज का पुत्र जदु, हाँ जदु महाराज के वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। तो आगे बात है, तो आज के प्रसंग में श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने शिष्य परीक्षित महाराज को ये भौतिक संसार किस प्रकार का कामग्रस्त में उलझा हुआ है, अरे ऐसे कामग्रस्त में उलझने वाले प्राय जीवों में से कुछ ऐसे कदापा, बड़े गिने चुने ऐसे ही कामग्रस्त जीवन के महल से, ऐसे बीच कामग्रस्त जीवन के बीच से एक एक कोई कोई भाग्यवान जीव ऐसे कामग्रस्त से वो बाहर निकल आते हैं। और ऐसे तो देखा जाता है बैचलर जीवन में ठीक है, भक्ति करना आसान है, वो सहज से वहां से निकल आ सकते हैं, लेकिन जो लोग पत्नियों के साथ रहते हैं, गृहस्थी में हैं, तो उनके लिए बात बहुत बड़ा कठिन है। जो लोग बैचलर है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, वो आसानी से ब्रह्मचारी जीवन बना सकते हैं, लेकिन गृहस्थ पत्नी के साथ रहते हैं, गृहस्थी जीवन में होते हैं, तो वो लोग तो ऐसे गृहस्थ जीवन को, ऐसे गृहस्थियों को चैतन्य महाप्रभु का राहत मिलती है। चैतन्य महाप्रभु ने आश्वासन देते हैं, चिंता नहीं करो। जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु रहा थे। उसी समय बांग्लादेश के गौड़ीय भक्त लोग जाते थे और पूछते थे, गृहस्थ जीवन में परेशान हो जाते हैं, ऐसे गृहस्थ जीवन एक प्रकार का परेशानी है। हाँ, और गृहस्थ जीवन एक प्रकार बुरा नहीं मानना, गृहस्थ लोग आप लोग गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ हो तो यहाँ पे नहीं आते, भक्त हो आप लोग। तो ऐसे गृहस्थ जीवन हमेशा एक प्रकार का चिंता और भय में पूरे रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा भय में रहते हैं क्या होगा ऐसे। तो ऐसे गृहस्थ जीवन को, ऐसे गृहस्थियों को महाप्रभु आश्वासन देते हैं, डरो मत, नहीं डरो। हाँ, अगले साल में जब इतने महाप्रभु को मिलने के लिए जाते थे और महाप्रभु को पूछते थे, अब आप बताइए इसका सोल्यूशन क्या है, उनका समाधान कहाँ है, क्या ऐसे सहज हमें ग्रस्त है, अग्रस्त में पड़े हैं, हमारे गृहस्थ जीवन हमें कैसे उधार होगा, कैसे उधार होंगे। जैसे महाप्रभु बोले, महाप्रभु ऐसे गृहस्थ को बता के रखे कि चिंता नहीं करो, चिंता करो, तुम्हारा उधार मैं करूंगा। क्या चिंतित नामिरुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, यदि तीन काम करोगे मैं साक्षात आकर के तुम लोगों को उधार कर लूंगा। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो हमें देखेंगे ऐसे आज के प्रसंग में जजाजी महाराज का जो प्रसंग है और ये भी देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के जमाने में पशु जंतु जानवर भी उद्धार हो गए। हमें देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के जो ये मोमेंट में जंतु जानवर भी उद्धार हो गए। हम जहां पर जंतु जानवर उद्धार हो गए वहां पर मनुष्य क्यों नहीं उद्धार होगा, मनुष्य इसीलिए उद्धार नहीं हो पाता, मनुष्य बेईमान है। चैतन्य महाप्रभु का विशेष कृपा का एक नादान फायदा उठा रहा है, इसीलिए सब गड़बड़ हो जाता है। तो आज के प्रसंग में जो भी है, आज के प्रसंग में हमें देखेंगे जजाति महाराज पहले तो काम का जीवन को भोग किया और भोग करने के बाद आज के प्रसंग में अपने जो कामुक जीवन का जो रियलाइजेशन है और उसके साथ साथ वो तो पछताते हैं, अपने पत्नी को बताते हैं कामुक जीवन कैसे होती है और अपने जो अनुभव है वो अनुभव को बताते बताने के साथ साथ भी बहुत बड़ा पछताव करते हैं और पछता को जो पछताते हुए अपने अनुभव को ये सारे चीजों में कहते हैं बताते हैं। तो हमें यहाँ पर यही बात देखेंगे जजाति महाराज के जीवन से, तो वो इतने हद तक कामुक बन गए थे अपने जवान लड़कों के पास जाकर, अपने जवान लड़कों के पास जाकर वो कहने लगे, ए मेरे बेटे, ए मेरे पुत्र लोग, अभी संसार को भोगने के लिए मेरे भीतर इच्छा है, तो आप लोगों का जवानी को मुझे दे दो और मेरे बुढ़ापा ले लो। यहाँ पर ये बात प्रमाण होती है कि इस प्रकार मतलब जजाति महाराज काफी हद तक ऐश्वर्य बन गए थे, इतने हद तक वो अमुक हो गए थे। यहाँ पर जजाति महाराज का विशेष चीज दिखती है, वो अमुक हो गए। कोई पुरुष का स्त्री रुड़ गई है मतलब कुछ गुस्सा में है, तो दो शब्द के द्वारा हमें उनको मना सकते हैं, अगर नहीं मानती है तो दूर हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जजाति महाराज मनाते तो है और यहाँ तो इतने कामुक हो गए हैं तो वो अपने पत्नी के चरण में भी गिरते हैं। तो ये अति आसक्ति और अति कामुक कामुक कामुकता का पहचान है। यहाँ पर जजाति महाराज के जीवन में जो बात दिखती है ये अति कामुक का पहचान है, जो कि है अंततत्व हम देखते हैं कि जजाति महाराज किसी भी प्रकार वो कामुक जीवन से वो बाहर आते हैं और भगवान के शरण लेते हैं और भगवान के भक्ति द्वारा ही काम का समन किया जा सकता है। रामानुजाचार्य और बड़े गरीब है, एक दिन रामानुजाचार्य के घर में पधारे पधारे तो देखे कि हमारे घर में कुछ नहीं है, दो टाइम खाने के लिए ऐसे कुछ जुटा नहीं था। और ऐसे अवस्था में जब गुरु जी घर पर आए तो उनका कैसे सेवा करें। रामानुजाचार्य अपने पत्नी के साथ, न सॉरी रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे पत्नी के साथ समझौता किए और करने के बाद वो घर से बाहर निकल गए व्यवस्था करने के लिए। जब बाहर निकले और समय अधिक हो रही थी तो रामानुज ना शिष्य के जो पत्नी थे देखे कि मेरे पति को आज कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपने पति का अपेक्षा न करते हुए तो गए कि गांव में एक जमींदार रहते थे, हमेशा उन पर आंख रखता। तो पास गए और जाकर के कहे देखो घर में मेरे गुरुजी हैं, उनकी सेवा करना है, तो कृपा करके मेरे गुरुजी की सेवा के लिए मैं कुछ कुछ वस्तु चाहता हूँ तो मुझे दे दीजिए। जमींदार खुश हो गए। हाँ, उनको बुलाते हुए वो आता नहीं था तो आज कैसे ये मेरे पास है। तो पत्नी बोली, उसी पत्नी बोली देखो मैं गुरु जी के सेवा के लिए कुछ चावल दाल सब्जी घी ये सब चाहिए मुझे दे दीजिए, तो कहने के अनुसार मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगी। जमींदार खुश हो गया और खुश होकर के सारी चीज दे दिए और लेकर के आई आकर के अपने गुरु जी के लिए सारे तैयार कर दी। जब तैयार हो गया सारी चीज तो उस समय उनके पत्नी न सॉरी उनके जो पति थे तो वो बाहर से आए, दुखी दुखी उदास होकर के आए, कुछ मिला नहीं तो उदास होकर के आकर पहुंचे। और जब आकर के पहुंचे देखे इतने सारे आइटम्स सब हुई है तो पूछने लगे अपने पत्नी को, घर में कुछ नहीं था तो आप इतना सारे व्यवस्था कैसे कर दिए। तो उनके पत्नी सारे बातों को बता दिए कि गुरु जी के सेवा के लिए ऐसे 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 तो सारी बातें को बता दिए। ठीक है, ये बात बाद में देखा जाएगा कि आप गुरु सेवा कीजिए। तो उन्होंने पति पत्नी दोनों मिलकर रामानुजाचार्य की सेवा किए। रामानुजाचार्य का सब सेवा हो जाने के बाद तो रामानुजाचार्य अपने शिष्य का औकात को जानते थे, ये कितने अवस्था में कितने अवस्था में जानते थे। तो पूछे आप लोग इतने गरीब हो लेकिन इतने सारे व्यवस्था आप लोग कैसे किए कर पाए। तो गुरु जी को क्या छुपाना है, सारे बातें बता दिए पति पत्नी दोनों रामानुजाचार्य को सारे सारे बातें बता दिए। तो रामानुजाचार्य शांति से सुने और सुन करके बोले तो उन पत्नी को बोले कि आपको जाना है ना तो मेरा जो उचिष्ट है आप ये लेके जाओ और जमींदार को दे दो। पत्नी वो रामानुजाचार्य को जो उचित तो उनको हाथ में लेकर के गए जमींदार के पास गए। जमींदार उनके वो स्त्री को देख करके बड़े खुश हो गए। हाँ, तो कहने लगे जमींदार को मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर लेकर के आई हूँ तो क्या करके इस हेड को आप ग्रहण कीजिए। तो जमींदार वो के हाथ से रामानुजाचार्य का जो महाप्रसाद थी वो महाप्रसाद को ग्रहण किया। जैसे वो जमींदार रामानुजाचार्य के उचिष्ट को ग्रहण किया तुरंत उनके भीतर जो भोगने की जो प्रवृत्ति थी वो तुरंत नष्ट हो गया। कहने की यहाँ पर यह भाव है कि चाहे संसार में कितने भी कामी हो जैसे गुरु और कृष्ण की कृपा हो जाती है तो कामी व्यक्ति कामी बन जाता है। जैसे और गुरु की कृपा होती है इतने बड़े कामों की हो तो उनके हृदय में बहुत बड़ा बदलाव एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाती है। तो जब तक हमें भोग में रहेंगे हमें तपस्या नहीं कर सकते। तपस्या का मतलब क्या है, स्वेच्छा से भोग को छोड़ देना। प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्य के साथ बैठे थे और एक कामुक जीवन के प्रसंगों को कह रहे थे, अपने शिष्यों को एक काम के विषय में कुछ कह रहे थे। तो आज मनुष्य तो ऐसा हो गया जंगली जानवर से भी नीचे हो गया। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मनुष्य पशुओं से भी इतने कामुक बन चुका है, पशुओं का एक ठिकाना है, एक निर्दिष्ट समय है, जंगल की जो सैर है वो साल में एक बार संभव करता है, लेकिन मनुष्य साथ पशु श्री और इतने हद तक बन गया, नीचे हो गया। इस प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे थे, तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कह रहे थे कि एक महीना में, दो महीना में, छह महीना में, साल एक बार एक पुरुष को संभोग में होना चाहिए। इस प्रकार जब कह रहे थे तो तमाल कृष्ण स्वामी या कोई एक शिष्य वो कह पड़े, प्रभुपाद ऐसा हो कि कामुक जीवन को एकदम से भुला दिया जाए। तो प्रभुपाद जी सुन के बोले, हाँ ये लड़का बहुत अच्छा है। तो कहने की यह है, प्रभुपाद जी और कहते हैं, आज के समय में अमेरिका के जो बूढ़ा है पार्टी क्लब में जाता है स्त्रियों के जवान तरुणियों के साथ नाच गान करने के लिए। और ये बात भी प्रभुपाद जी सेकंड कंटो में बताया है, यूरोप के जो बूढ़े लोग हैं, तो ये बूढ़े लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए बंदरों का शरीर का एक पार्ट को काट कर बहुत पैसा खर्च करके, बहुत इसलिए उनको बहुत पैसा देना पड़ता है। यूरोप के बूढ़े लोग इंद्रिय के लिए ये बंदरों का शरीर का एक पार्ट को खरीदते हैं, बड़ा सफल होता है। हाँ, तो बंदरों का शरीर का एक पार्ट को खरीद के ये इंडिया से यूरोप को मतलब ये होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो जाता है। तो वहां पर यूरोप के बूढ़े लोग ये बहुत पैसा खर्च करके वो पार्ट को, बंदरों का शरीर का जो पार्ट है वो पार्ट को खरीद के अपने शरीर में जोड़ करके वो काम वासना को अंत तक, जीवन के अंत तक, मृत्यु तक वो वासना को चालू रखने के लिए ये प्रयास करते हैं। यहाँ पे सोचिए, काम वासना ऐसे कोई भक्त नहीं सोचते कि भक्ति करूंगा तो काम वासना मुझे नहीं सताएगा। ये काम वासना भगवधाम जाने का एक मिनटों पहले भी आपको सता है कि आप गिरा सकता है। ये काम वासना इतने बड़े भयंकर चीज है, इतने डेंजरियस है, वो जीवन के अंत तक आपके आपको देगा नहीं। लेकिन यदि भक्ति भक्ति सही समय करें तो आएगा, लेकिन आप काम वासना के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। काम वासना आएंगे, काम वासना के द्वारा भक्त प्रभावित नहीं होता है, ये बात। एक भक्तों के भीतर भी काम वासना आता है, ऐसा नहीं जो भक्तों के भी काम वासना नहीं आते, आते हैं, लेकिन काम वासना को थुकता है यमुनाचार्य के जैसे। यमुनाचार्य ने कहे कि हे मेरे पितरों, हे देवता लोग, हे संध्य वंदना, ये आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका देवता लोग, मैं स्थापन नहीं कर पा रहा हूँ, यज्ञ नहीं कर पा रहा हूँ, लोग इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये और क्या, तो संध्या वंदना जो हम करते हैं वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कंस के जो कंसारी है, कंस को मारने वाला, तो उनके शरण मुझे इतने आती है, सताना मतलब इतना, मतलब जैसे भौतिक चीज हम भौतिक लोगों को सताती है, वो उनके बिना नहीं करे किए बिना नहीं रह पाता है, उसी प्रकार भक्तों लोग को भक्ति भी भगवान ना भक्तों को सताता है, भक्ति के बिना एक आधा मिनट भी वो भक्ति के बिना नहीं रह पाते। तो यमुनाचार्य जी यही बात को कहते हैं कि तो मेरे मन में जब काम वासना आती है तो मैं कंस का मारने वाला कंसारी उनको मैं स्मरण करने के कारण काम वासना थूक देता। वैसे यमुनाचार्य जी बताते हैं। तो यहाँ पर और एक बात बताया जाता है, ब्रह्मचारी कृष्ण कॉन्शियसनेस बुक में अच्छा स्वामी महाराज भी बताते हैं, जब एक ब्रह्मचारी कोई माता जी के साथ बात करता है तो उन चरण कमल को ध्यान दे के बात करना चाहिए, स्वामी महाराज बताते हैं। और ब्रह्मचारी को यदि काम वासना है तो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र सनत कुमार, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र सनत कुमार, उनका स्मरण करने के लिए भागवतम के भीतर बताया जाता है। चाहे कितने भी कामुक हो जाए, कहाँ हद, कितने हद तक वो भोग करेगा, हाँ कितने कहाँ तक वो भोग करेगा। एक दिन वो भोग, भोग की आइटम, भोग की साधन आपको छोड़ चला जाएगा, तो वो भोग की, भोग का साधन कुछ आप छोड़ के चले जाओगे। यदि पुरुष स्त्री भोग करना भोग में है, ये पुरुष आपके साथ रहेंगे, एक दिन वो पुरुष स्त्री को छोड़ के चला जाएगा, स्त्री वो पुरुष को छोड़ के चला जाएगा। ये काम वासना का फॉर्मूला है। काम वासना ज्यादा समय तक नहीं है, हाँ काम वासना थोड़े समय के लिए है, लंबे समय तक उनका दुख का प्रभाव रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका में पहुंचे, जब देखें अमेरिका के जो तरुण और तरुणी इतने काम वासना में कामुक जीवन में थे, तो प्रभुपाद जी का आंखों में आंसू आ गया। इसलिए आंसू आ गया कि वो लोग जानते नहीं है अगले कदम में अन्य गिनित दुख झेलना पड़ेगा उन लोगों को। अभी तो भोग कर रहे हैं, भोग ले रहे हैं, लेकिन अगले कदम में वो लोगों को इतने मतलब दुख झेलना पड़ेगा, तो उनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इस संसार के बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं, हाँ भोग करने के लिए प्रयास किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। हाँ जैसे हमें भोग करने के लिए हम प्रयास करते हैं, काल का पहला शिकार बन जाते हैं। जैसे हमें भोग करने के लिए प्रयास करते हैं, काल हमें पहला शिकार बना लेता है। और भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं, यही संस्पर्श, ये आदि शुरू से अंत तक आपको दुख देगा, यही संस्पर्श जब होगा दुख तो यो नहीं ये बोते आद्यंत बंद कौन से, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति उसके बगल में करीब भी जाने के लिए कभी इच्छा नहीं करता। तो ये मैं क्लास में कभी भी बताया था पहले क्लास में, और सुंदर मर्सिडीज गाड़ी है, और पति पत्नी दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं, और पतिदेव ड्राइविंग कर रहे हैं, और पत्नी जी में बैठे हैं, बाजू के सीट में बैठे हैं, और अपने मनी पर्स से तो अब छोटा सा मिरर निकाल करके अपने ओठों को लिपस्टिक लगा रही है, और पीछे अपने मेकअप करते करते अपने पतिदेव को बोल रहे हैं, आप ये क्या, कौन सी क्या गाड़ी ले लिया, हमारे निबर वाला को नहीं देखा, इतने महंगी वाली गाड़ी लिया, आप तो वही रह गए। ठीक उसी समय तो गोल गोल बच्चे पीछे से कह पड़े, डैडी डैडी ये वाले होटल में नहीं, फाइव स्टार होटल में लेके चलो। तो डैडी जी सुनकर के बोल रहे हैं, ओके मैं तुम्हें फाइव स्टार होटल दिखाता हूँ, फाइव स्टार होटल में लेके जा रहा हूँ। तो ऐसे ही कहते कहते बच्चे लोग, डैडी हमारा गाड़ी कितना अच्छा है, एकदम तो हाईवे के ऊपर गाड़ी चल रही है। और बच्चे लोग पड़े, हमारा गाड़ी कितने अच्छे, कितना स्पीड से भाग रहे, स्पीडी से भाग रहे, इतने कहते आगे से एक टैंकर आती है और मारती है जोर से, जैसे मर्सिडीज को आगे का टैंकर आके मारती है, और तुरंत पतिदेव जो ड्राइविंग कर रहे थे, तुरंत इतने धक्का होती है, वो दरवाजा को जबरदस्ती खोल करके बाहर आके गिर जाते हैं। जब पति को बगल में पत्नी नहीं देखती है, और वो दरवाजा पत्नी के पत्नी को ज्यादा कुछ चोट नहीं लगती है, पत्नी जब दरवाजा खोल करके आगे देखते है, क्या है, उड़ जाती है, पतिदेव का डेड बॉडी हाईवे के ऊपर लेटा हुआ है, और खुपी का जो मेटेरियल है वो अलग से निकल करके और कोई जगह में है, और सारा शरीर खून खून है। और जब इस अवस्था में अपने पति को पत्नी देखती है, तुरंत अपने सर को आपको पकड़ती है, और इतना जोर चिल्लाते, एक चिल्लाने में वो पागल बन जाती है, अपने पति को इस अवस्था में देखकर एक चिल्लाते चिल्लाने की आवाज से वो पागल बन जाती है। और दोनों बगल में बच्चे लोग, मासूम बच्चे, वो बेसहारा बन जाते हैं, पिताजी का मृत्यु हो जाती है, और पत्नी डैडी का मृत्यु हो जाती है, और माँ पागल बन जाती है, और दोनों मासूम बच्चे अनाथ बन जाते हैं। जब इस प्रकार का सीन हो जाती है, बगल में काल खड़े होकर के, हा, मेरे बच्चे भोग करने के लिए आए थे ना, भोग करना है ना, भोग लिया, हो गया भोग। तो भगवान कहते हैं हाँ ये काल, ये काल कौन है? भगवान बोलते हैं काल, और मैं काल। हाँ जे जो भी कोई व्यक्ति संसार में भोग करने के लिए प्रयास करेगा तो भगवान कहते हैं मैं उनके सामने कैसे प्रस्तुत होता हूँ ना, काल के रूप में। हाँ तो भगवान इसलिए यहाँ पर एक अनिच्छा बनी देते हैं, भोग में नहीं रहना है। हाँ हमेशा त्याग के स्तर में रहेंगे तो हमेशा आनंद की अनुभव कर पाएंगे। आप लोग मछली देखे होंगे, मछली अपने जीवा से लारा निकालती है और एक जाल बनाती है, घर बनाती है, और एक घर में गिर करके और मर जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर बैठे हुए लोग ऐसा नहीं सोचना कि कोई कोई व्यक्ति गृहस्थ कैसे दुखी होकर के बोल देते हैं आप लोग तो ठीक हो, सही हो, आप लोग सही जगह में हो, लेकिन हम लोग ऐसे जगह में है, घर में आसक्ति होती है, पत्नी में आसक्ति होते है, बच्चे में आसक्ति होती है, बाबा भक्ति करने के लिए चाहते ही भी तो नहीं हो पाता है। ये सही बात है, ये भौतिक जगत में हम भी आसक्त हो जाते हैं और किसी के प्रति विरक्त हो जाते हैं, लेकिन जो लोग भक्त है किसी के प्रति आसक्त होना ये ठीक नहीं है, और किसी के प्रति विरक्त भी होना ये भी ठीक नहीं है। हाँ हाँ ये मेरे भक्ति का समस्या है, उसके वजह से मेरा भक्ति नष्ट होती है, मैं उसे दूर दूर रहूं, ये सही नहीं है। हमें किसी को छोड़ नहीं सकते, हमें किसी को छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे तो आप भक्ति, आप भक्ति में बराबर नहीं हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं राग द्वेष विमुक्तेस्तु। हाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं अर्जुन, हाँ राग और द्वेष, राग मतलब आसक्ति और द्वेष मतलब व्यक्ति, हमें किसी के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और किसी के प्रति विरक्त नहीं होना चाहिए। आसक्ति और विरक्ति के जो ऊपर की वस्तु है ये ट्रांस है, ये दिव्य है, और ये बहुत प्लेजरफुल मतलब बहुत आनंदमय स्थिति है। भक्त ये अवस्था में पहुंचता है तो ये आनंद, ये आनंद में पहुंचने के बाद ना किसी के प्रति आसक्त होता है वो भक्त, ना किसी के प्रति विरक्त होता है। हम कहते हैं प्रभु जी आपके बिना तो मैं रह नहीं सकता, ये सही बात है। ये इसलिए कह रहा है कि उनका आसक्ति और कहीं है, तो वो यदि वह कह रहा है वो सही कह रहा है, वो आसक्ति वहीं पर है करके वो कह रहा है, लेकिन भौतिकवादी लोग यदि कहते हैं प्रभु जी आपको तो मैं बहुत प्रेम कर रहा हूं, वो झूठ बोल रहा है। कि भौतिकवादी लोग प्रेम में नहीं होते, हमेशा काम में होते हैं। आसक्ति प्रेम सही नहीं है, लेकिन भक्तों का जो आसक्ति है, भक्त जो प्रेम है, भक्त प्रेम सही प्रेम करता है, उनका उनके प्रेम में कोई धोखा नहीं है, नहीं है। लेकिन भौतिकवाद संसार में देख लो कितने लोगों को प्रेम करते हैं, तो उनका प्रेम और उनका आसक्ति बराबर नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले अर्जुन राग द्वेष विमुक्तेस्तु, तभी जाके मेरा प्रसाद प्रसादम अधिगच्छति, ये राग और द्वेष से ऊपर उठो। कभी कभी हमें ऐसा दिखाते हैं, इतने बैरागी दिखाते हैं, हर चीज से हमें दूर दूर रहना चाहते हैं। हाँ हर चीज से हमें दूर दूर रहे, कहां तक दूर दूर रहोगे, कहां तक दूर दूर रहोगे। हाँ भरत महाराज सब कुछ छोड़ दिए, छोटे वस्तु के प्रति आसक्त हो गए। भरत महाराज कितने बड़े बड़े वस्तु को छोड़ दिए, लेकिन कहां जाके आसक्त हो गए, हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये फल्गु वैराग्य है, ये शुष्क वैराग्य है, और ये वैराग्य थोड़े समय के लिए दिखेगा बहुत चाचक है, बहुत सुंदर दिखती है, उनका वैराग्य तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन ऐसे वैराग्य शुष्क वैराग्य लंबे समय तक दिखती नहीं है। लेकिन हाँ युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य भगवान के साथ कनेक्टेड होकर यदि हमें किसी को किसी के साथ संबंध बनाते हैं, फिर वो वैराग्य कभी टूटता नहीं, खत्म नहीं होती है वो। हाँ आपको भगवत धाम पहुंचाने के तक हाँ वो आपके साथ ही रहेगा, ये है युक्त वैराग्य। लेकिन गलती हमें यहाँ पर यही करते हैं कि हम युक्त हो जाते हैं, वैराग्य बात बढ़ जाती है। मोबाइल लेते हैं आ जाता है, मोबाइल क्या यूज करते हो, हाँ ब्रह्मचारी जी कह देते हैं अरे प्रभु जी आप जानते नहीं हो ये युक्त वैराग्य है। हाँ फोन करते हैं युक्त हो जाते हैं, लेकिन वैराग्य खत्म हो जाती है। तो गलती हमें यहीं पर करते हैं। तो कहने के अर्थ यहाँ पर ये है, कभी कभी हमें दिखते हैं हाँ भक्तों में भगवान के सामने भी खड़े हैं, लेकिन उनके भीतर इतने विषय वासना होती है, प्रबल होती है, और भगवान के सामने खड़े होकर ही उपचय के प्रति आकृष्ट हो जाता है। जब तक हम इंद्रियों का कहना सुनेंगे, तब तक हमें इंद्रियों का हाँ इंद्रियों जो बोल रहा है यही करने लगेंगे, तब तक हमें भौतिकता में नहीं रहेंगे। जैसे हमें भगवान का उपदेश के अनुसार कार्य करने लगेंगे तो फिर हमें आध्यात्मिक पद को प्राप्त करेंगे। हाँ कभी कभी लोग ऐसे आवाज उठाते हैं, हाँ क्या मंदिर में जाना है, हम जब कहते हैं आप मंदिर में आ जाओ क्या छोड़ दो, जब कहते हैं तो ऐसे बहुत सी बात लोग बता देते हैं, कह देते हैं, हमें जवाब देते हैं, अरे क्या मंदिर जाके भगवान को प्राप्त करने के लिए उतना तो कष्ट, उतना उतना प्रयास, उतना तो कष्ट झेलना पड़ेगा जितना हम घर में रह करके कष्ट झेलते हैं। जी कहते हैं ये आपत्ति वैध नहीं है, ऐसा जो प्लेन है वो सही नहीं है। तो लोग इसीलिए ऐसी बातें बता कहते हैं कि वो लोग अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, घर छोड़ देंगे, मंदिर में क्या हमें रिकमेंडेशन ठीक से मिलेगा कि नहीं, हाँ हमें रहने के लिए सुविधा, खाने पीने का सब बराबर होगा कि नहीं। हाँ यदि सुविधा देखेंगे तो फिर हाँ भक्ति नहीं कर सकते। उपस्था मतलब स्वेच्छा से कुछ शारीरिक कष्ट को अपने जीवन में अपना लेना है भक्ति के लिए, भक्ति के लिए लिटरली वॉलंटियरली स्वेच्छा से कुछ शारीरिक कष्ट को अपना लेना, तो यही भक्ति है। भले हमें हाँ विष्णु प्रभु वो दिन बता रहे थे रिजर्वेशन नहीं मिले मिलेगा चलेगा, भले कमन बाथरूम में वृंदावन में जाके कमन बाथरूम में रहे चलेगा। हाँ ऐसे अवस्था में जो ऐसे अवस्था में रहते हुए यदि हमें वृंदावन में रहेंगे तो वृंदावन का दर्शन हमें मिलेगा, धाम का दर्शन हमें अनुभव कर पाएंगे, धाम हमें कृपा करेगा। लेकिन आटेज बाथरूम के भीतर बहुत हाँ सुविधा के भीतर जब धाम में जाके लग्जरी खोजेंगे, धाम में जाके विलास व्यसन खोजेंगे, फिर धाम का कृपा हमें प्राप्त नहीं कर पाएंगे, फिर हम भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ जितना भक्ति के लिए जितना हमें कष्ट को स्वीकार करेंगे, कहना सहज है ये कष्ट को अपनाना बहुत मुश्किल है। तो ये हमें ना उत्पत्या तपस्या भले बाहर दृष्टि से दिखती है बहुत कष्ट है, लेकिन तपस्या का अंदर अंदर एक कष्ट के भीतर एक प्रकार का सुख है, एक प्रकार का आनंद है। ये जो लोग तपस्या करते हैं वो लोग ये बात को अनुभव करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे कंप्लेन कर देते हैं कि मंदिर में जाने के बाद भी इतना ही मगजमारी करना होगा, तो घर घर में रहकर ये मगजमारी करना होता है। लेकिन घर और मंदिर का जो कार्य समान दिखती है, कार्य कार्य के पीछे जो हमारी चेतना है, भक्तों का जो चेतना है वो एक वो घर में रहकर जो चेतना में काम करता है और मंदिर ब्रह्मचारी जिस प्रकार चेतना में काम करता है बहुत तफात है। ये चेतना का फर्क हो जाने के कारण वो बंध जाता है, वो मुक्त हो जाता है। हाँ वो अनेक अनेक काम करके वो कष्ट हमें अनुभव करता है, लेकिन छोटे से छोटे बस मंदिर का झाड़ू मार कोई व्यक्ति आके मार दिया, वो एक प्रकार का आनंद की ट्रांसेंडेंट बहुत बड़ा सुख की अनुभव करता है। कभी कभी हमें बता देते हैं प्रभु जी हाँ पीना आपके हेल्थ के लिए बहुत खराब है, हाँ सुनता नहीं है, बीड़ी पीते जब कैंसर हो जाता है डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है बीड़ी छोड़ना पड़ेगा, डॉक्टर बोलता है छोड़ेगा, भक्त बोलेगा तो छोड़ेगा नहीं, भक्त बोलेगा छोड़ेगा नहीं, लेकिन जो बोलता बोलेगा तब जाके छोड़ेगा। ये बद्ध जीव का बहुत बड़ा मतलब कमजोरी है। हाँ इसलिए आज के प्रसंग में हमें देखते हैं जगत महाराज इतने हद तक ये संसार में कोई पिताजी अपने जवान लड़कों के पास जाके कहेगा ए मेरे बेटो हाँ आप लोग को जवान तरुण दे दो हाँ और मुझे भोगना है। हाँ इतने काफी काफी हद तक जब जजाति महाराज कामी बन चुके थे हाँ तो मैं सोच नहीं सकते, फिर भी उनके ऊपर बहुत बड़ा कृपा रहा भगवान का। जजाति महाराज कोई सामान्य नहीं थे, भक्त थे, उनका डायनेस्टी है भगवान श्री कृष्ण, वो भक्त परिवार थे। हाँ तो आगे जाकर के हम देखेंगे एक क्षण में जिस प्रकार एक पक्षी हाँ घोंसला में घुसा रहता है, जैसे पंख लगता है वो घोंसला को छोड़ करके उड़ जाता है, तो उसी प्रकार जैसे कि भक्त जीव को भक्ति का चस्का लग जाता है वो तुरंत तत्क्षणात वो सारा संसार को छोड़ देता है। उसी प्रकार इतने कामुक, हाँ, एक स्त्री के चरण में गिरना, पुरुष एक स्त्री के चरण में गिरना, छूट गया मना संगे दो शब्द के द्वारा, लेकिन पुरुष होकर के शब्द में गिरना, ये बहुत बड़ा गहरा आसक्त का पहचान, ये बहुत बड़ा गहरा कामुकता की लक्षण है। यही आसक्ति, यही सिम्टम, ये लक्षण सब जजाति महाराज के जीवन में पूरा साफ साफ दिखती है। फिर भी ऐसे कामुक व्यक्ति को उद्धार करने के लिए भगवान हमेशा उत्सुक रहते हैं। और हुआ 1000 साल तक गृहस्थ जीवन में जजाति महाराज देवयान के पास भोग किया। एक दो दिन कुछ साथ रहते हैं तो उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं। 40-50 साल 20 साल घर में रहते हैं, घर को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जजाति महाराज देखिए, एक मुहूर्त में 1000 साल तक उन्होंने देवयानी के साथ रहे और इतने समय, लंबा समय तक गृहस्थ जीवन में रहे, लेकिन जैसे भगवान, और ये सत्य बात है, जब तक गुरु साधु सत्र और भगवान का कृपा नहीं होती है, ये गृहस्थी के गहनतम अंधकार से, वहां से निकलना, विदुर जब तक नहीं धिक्कारे, तुम कुत्ते हो, धृतराष्ट्र को जब तक नहीं धिक्कारे, विदुर जी जैसे महान संत, वो निकाले किसको, धृतराष्ट्र जैसे, धृतराष्ट्र कौन है, एक आसक्ति का मूर्ति है, ऐसे आसक्ति को निकालते कौन, न गुरु और भगवान की कृपा। ऐसे जजाति महाराज के जीवन में हुआ, तो जजाति महाराज के ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी भगवान के, नहीं तो वे गृहग्रस्त के इतने गहरा जगह से निकल पाना संभव है। और हम देखते हैं आगे जाकर, हमें सुनेंगे जजाति महाराज भगवान का भक्ति करके भगवान का धाम में जाते हैं। और आज के ये प्रसंग में अपने स्त्री के सामने अपने जो पुरुष स्वभाव का, अपने जो पुरुषत्व का जो एक कमजोरी है, एक कमजोरी को कहते हुए अपने मन के बल को बढ़ाते हैं। गृहस्थ में मन के बल कम रहता है, कह देते हैं, कह देते हैं आप लोग तो ब्रह्मचारी हो, भानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, लेकिन हमारा कैसे होगा, हमारा तो मन इतना एक ही जगह में लगा हुआ है, कम रहता है। लेकिन मन को बल को बढ़ाने के लिए हमेशा यदि हमें भगवान के और भगवान के भक्तों के साथ रहेंगे, निश्चित रूप से ये स्थिति से उठ सकते हैं। तो प्रसंग के द्वारा जजाति महाराज अपने कमजोरी को कहते हैं, और कमजोरी को कहते हुए भी कमजोरी से ऊपर उठना है, एक सही अवस्था में पहुंचना है, ये बात के ऊपर भी अपने स्त्री को यानी प्रयास करते हैं। और जब जयति महाराज सही भक्ति पे आ गए, वो कई लोगों को उद्धार कर दिए। जब हम आसक्त रहते हैं इस संसार के प्रति, कोई व्यक्ति के प्रति, हम खुद का उद्धार नहीं कर पाते हैं, तुरंत छोड़ना चाहिए, भक्तों को छोड़ना नहीं चाहिए, कि वो व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, आसक्ति जो चीज है उसको छोड़ना है, काम को छोड़ना है, प्रेम के साथ वो व्यक्ति को देखना है। ये बात जजाति महाराज जो देखा, तुरंत अपने देवयानी को छोड़ दिया, जो देवयानी के भाग भाग के अपने ससुर घर तक पहुंच गया था, वो एक जजाति महाराज एक मिनट में छोड़ दिया, जब आसक्ति और काम को छोड़ एक मिनट में छोड़ दिया। तो यहाँ पर बात जजाति महाराज के ये रियलाइजेशन से हमें भी तैयार करना है, हमें किसी के प्रति आसक्त तो नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति कामुक होकर के उनके साथ रहना नहीं चाहिए। आसक्त होना है तो भगवान के भक्ति करते हुए, भगवान को बीच में रखते हुए यदि आसक्त होते हो तो फिर ये आसक्त बराबर है। यदि भगवान को भूल कर जब कोई वस्तु के साथ जोड़ना चाहते हैं, फिर वो वस्तु आपको नरक भेज देगा। तो ये बात को ध्यान रखते हुए आज के ये सत्संग से यदि हमें कुछ जजाति महाराज का जीवन का रियलाइजेशन साथ भाग लेंगे, तो हमारे जीवन में यदि कुछ भक्ति करते करते कमी है, कुछ त्रुटि है, वो त्रुटि का सुधार सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील कुछ कुछ क्वेश्चन या कमेंट, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।